गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव
श्री उडुपी कृष्ण भगवान की परशुराम क्षेत्र महात्म्य की श्री गोकर्णेश्वर महादेव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के 29 दिसंबर के शाम की सभा में उडुपी धाम में स्वागत है। कल हम यहाँ से गोकर्ण जाने वाले हैं, गोकर्ण, मुर्डेश्वर और गोकर्ण। तो कल के दिन बहुत लंबी सफ़र करना है हमको, इसलिए शायद कथा करने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन मिल भी सकता है, हम ज़रूर चांस लेंगे, मिलेगा तो। और जगह भी अच्छी है वैसे, और लेकिन शायद लंबी कथा करने का समय नहीं मिलेगा, छोटी कथा ज़रूर हो सकती है। तो गोकर्ण जो है वो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर में है, और गोकर्ण वो स्थान है जहाँ पर परशुराम जी ने खड़े होकर अपना परशु फेंका था, और वहाँ से कन्याकुमारी तक ये क्षेत्र जो है परशुराम क्षेत्र उसको निर्माण किया था। तो परशुराम जी के भी चरण वहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी मैं रिकॉर्ड ब्रेक संक्षेप कहानी करने वाला हूँ, क्योंकि अभी शाम को रथ यात्रा होने वाली है, ये तो हमारा पुराण शुरू होता है तो समाप्ति नहीं होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि रथ यात्रा को आपको सबको समय पर वहाँ पहुँचाएंगे। तो इसकी कथा ऐसी है कि एक बार रावण की माता केकशी, पुलत्स्य मुनि की पत्नी, इसने रावण से बहुत विनती किया कि मुझे शिवजी का आत्मलिंग चाहिए, ताकि मैं उस पर पूजा करूँगी और शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास करूँगी। अभी शिवजी के बहुत सारे लिंग हैं, लेकिन ये जो लिंग चाह रही हैं इसको प्राण लिंग या आत्मलिंग कहते हैं, सबसे शक्तिमान। तो रावण पहुँचते हैं कैलाश हिमालय में, और वहाँ जाकर घनघोर तपस्या करते हैं, और घनघोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लेते हैं। और शिवजी महाराज प्रसन्न होकर पूछते हैं क्या चाहिए आपको, तो ये कहते हैं मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए। तो अभी सब लोग तपस्या करते हैं, राक्षस भी करते हैं, भक्त भी करते हैं, लेकिन राक्षस तपस्या करते हैं ना तो कुछ कपटी इच्छा को मन के लेकर करते हैं, जो भी वो तपस्या करके प्राप्त करना चाहते हैं उसका दुरुपयोग करके विश्व पर नियंत्रण करना चाहते हैं, विश्व के देवताओं को, मानवों को, सबको कष्ट देना चाहते हैं, उन पर नियंत्रण करके उनको बाधित करना चाहते हैं, पीड़ित करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि देवताओं को उनके लिए जो तपस्या करता है उसका फल देना ही पड़ता है, तो फिर उसको आत्मलिंग देना पड़ा उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कैसे आम जनता को बचाएं इनके आतंक से, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा ना। जैसे सरस्वती देवी ने उस दरिकासुर को गायत्री मंत्र दिया, लेकिन उसको फिर बृहस्पति ने आके उनको ऐसा बहकाया कि वो गायत्री मंत्र ही करना भूल गए। तो कुछ ना कुछ उनको अपनी शक्ति से परावृत्त करने के लिए करना पड़ता है। तो शिवजी ने भी उनको एक ऐसा बताया वाक्य कि वो जाके मानव जाति को बचा सकता है आगे। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि आप ये आत्मलिंग जो है ना वो अगर कहीं रखोगे ना जमीन पे, अपने निर्धारित जगह पर रखोगे, जहाँ पर भी रखोगे वहीं वो स्थिर हो जाएगा, और वहाँ से आप हिला नहीं सकते उसको, वो इतना ज़मीन के अंदर गड़ जाएगा कि कोई भी ताकत उसको निकाल नहीं सकती। और दूसरे एक कंडीशन रखी कि आपको पैदल यहाँ से जाना होगा अपने घर तक, श्रीलंका तक। कितना अंतर है मालूम है आपको? कैलाश में आप लोग गए हैं? कैलाश मानसरोवर, वो बद्रीनाथ केदारनाथ उसके भी बहुत आगे है, बहुत दूर है। आप गए हैं प्रभु जी कैलाश मानसरोवर? गए आप? बहुत, हाँ प्रभु जी दो बार गए हैं, 5-4 बार गए हैं। प्रभु जी के चरण सुना जरूरी है आप सबको, कैलाश मानसरोवर की यात्रा सब लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत बहुत ही कठोर यात्रा होती है वो, बहुत ही कठोर, सब जगह बर्फ ही बर्फ होता है। कितनी भी सुविधा निर्माण करेंगे तो भी तपस्या तो होती हो ही जाती है वहां पर। तो वहां से उनको पैदल आने को कहा, पैदल वो ऐसे चलने में हमारे जैसे नहीं थे, वो तो त्रेता युग के राक्षस थे ना, वो त्रेता युग में तो आम आदमी की ऊंचाई भी 25 से 50 फीट थी, आम आदमी, भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी, रावण स्वयं, कुंभकर्ण तो बहुत ही विशाल महाकाय था। तो हमारी हाइट को देख के आपको सोचना नहीं है, फिर भी चलना तो है ही इतना अंतर। तो वो चलकर उनको कहते हैं कि आप चल के जाना है और बीच में के रखना नहीं, किसी भी कारण रख देंगे कि वहीं बैठ जाएंगे। फिर अभी सभी लोगों को ये भय था कि अभी ये आत्मलिंग जाकर अगर रावण लंका में बसाएगा ना, तो साक्षात शिव जी की सारी शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। पहले से उद्दंड, ऊपर से अगर उसको उद्दंडता के साथ शिव जी की शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो वो पूरा तबाही मचा देगा। लेकिन शिव जी के अंदर तांडव नृत्य करके पूरे विश्व को नष्ट करने की शक्ति है, ये भी इसको प्राप्त हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने ये दो चीज़ें सोची इसके बाद में, फिर भी उनका संतुष्टि नहीं हुआ, उनको लगा कि ये भी करके रावण पहुंच जाएगा, फिर मानव जाति के लिए, देवताओं के लिए बहुत कष्ट उत्पन्न करेगा। तो फिर उन देवताओं ने एकत्र आकर मीटिंग किया, विष्णु भी आए और विष्णु ने भी उसमें अपना सहभाग दिया और उनको कहा कि अभी ये कैसे भी करके ये जो आत्मलिंग है इसको प्राप्त हुआ है ना, ये किसी भी तरह से लंका के अलावा कहीं और रखवाना चाहिए, इसके पास बस गया अगर वो तो फिर विश्व का कल्याण नहीं होगा। तो बहुत सोचने के बाद उनके मन में विचार आया कि ये इसके हाथ से छीनने के लिए केवल गणेश जी, गणपति भगवान जो है ना, वही योग्य व्यक्ति है। तो उन्होंने गणपति जी को बुलाया और बड़े प्रेम से विष्णु भगवान ने और उनको बैठ के उनका प्लान समझाया। उन्होंने कहा कि रावण इतनी कितनी गति से जाएगा ना कि वो उसका संध्या वंदन करने के पहले ही पहुंच सकता है, ऐसा भी मुमकिन है। तो क्या करें, अभी इतनी गति से जा रहा है वो, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने गणपति को कहा कि आप एक बालक का रूप धारण करो और हम अपने चक्र से सूर्य को ढक देंगे, तो लगेगा कि सूर्यास्त हो रहा है, तो संध्या वंदन का समय आ गया है, तो संध्या वंदन करने के लिए उसको कहीं ना कहीं उसको रखना ही पड़ेगा। तो आप जाना सामने, बालक मंत्र बोलना कि मतलब अपने आप को प्रस्तुत करना, फिर वो आपको कहेंगे कि इधर इसको जरा पकड़ो, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ, तब तक पकड़ के रखो उसको। फिर जैसे ही वो देंगे आपको तो फिर आप उनको रख देना नीचे। तो फिर वो आते हैं चल के, और चल के ना वो गोकर्ण जहाँ पर है वहाँ पर आ जाते, तो वहाँ पर ये बालक दो हाथ वाला है, तो चार हाथ वाले गणपति, लेकिन दो हाथ के रूप में बालक बनकर वहाँ पर आते हैं। और रावण देखता, अरे सूर्यास्त हो रहा है, और तुरंत उसको संध्या वंदनम करने की इच्छा होती है। तो बालक कहता है कि कोई चिंता मत करना, मैं हूँ ना, क्या मदद चाहिए आपको? तो कहते हैं कि ये जो आत्मलिंग है ना, ये आप पकड़ के रखना और नीचे रखना नहीं बिल्कुल, मैं तुरंत जितने जल्दी हो सके उतना संध्या वंदन करके आता हूँ। तो बालक भी क्या कहता है कि मेरी भी तो, मैं बालक हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मैं उसको पकड़ के रखूँगा, लेकिन जब मुझे वो भारी होने लगेगा ना बहुत, तो मैं तीन बार आपको पुकारूँगा, और तीन बार आप पुकार के नहीं आओगे तो मैं छोड़ दूंगा फिर उसको, मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि बालक हूँ। तो रावण कहते हैं कोई चिंता ही मत करना, मैं यूँ गया और यूँ आया। तो रावण जाते हैं समुद्र नदी किनारे, वहाँ पर नदी नदी भी है, वहाँ पर गंगावली और अघनाशिनी दो नदियों का संगम है गोकर्ण में। तो वहाँ पर जाते हैं रावण और तुरंत अपना संध्या वंदनम करना शुरू करते हैं। इसमें बालक तीन बार पुकारता है उनको, लेकिन रावण नहीं सुनते उसको, तो बालक वहाँ पर रख देता है उसको। जैसे ही ये लिंगा बालक रखता है जमीन पर, वो इतनी गहराई में पृथ्वी पर धस जाता है, घट जाता है। तो रावण तुरंत लौट के आते हैं, बालक वहां नहीं रहता है, बालक गायब। और लिंग देखता है कि जमीन पर पड़ा हुआ है, वो निकालने की कोशिश करता है तो उसको निकाल ही नहीं पाता है वो, इतना जोर लगाता है। रावण के पास बहुत बल था ना, पूरा बल लगाकर इतनी तपस्या करके उसने प्राप्त किया था ना उस फल को, तो पूरा बल तो लगा ही गया। पूरा बल लगाने के बाद भी वो टस से मस नहीं होता है, केवल उसके ऊपर के कुछ कवरिंग है ना, ऐसे क्या कहते हैं उसका आवरण, वो निकल जाते हैं उसमें, वो गुस्से से उसको निकाल के चार जगह फेंक देता है ऐसे। और वो जब प्रयास कर रहे हैं ना उसको उखाड़ने का, तो उसको ऐसा अनुभूति होती है कि शिव जी का लिंग कितना बलशाली है। तो वो उखाड़ते उखाड़ते महाबल 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 पुकार रहा है। इसके लिए उस लिंग का नाम पड़ा महाबलेश्वर। वो महाराष्ट्र वाला डिफरेंट है भाई देवी, वो उसकी डिफरेंट कथा है। वहाँ पर महाबल नाम का राक्षस था, उसको शिवजी ने मारा, इसलिए उसको महाबलेश्वर नाम दिया गया। और पंच नदी, कोयना और बहुत सारी नदियाँ वहाँ पर उगम होती है, वो डिफरेंट है। यहाँ पर रावण ने स्वयं उसका नाम का उच्चारण किया, महाबल महाबल महाबल, तो उसका महाबलेश्वर नाम हो गया। और उसको समझ गया कि ये देवताओं का षड्यंत्र है, इस ट्रिक ऑफ डेमिगॉड्स, लेकिन क्या करेगा। क्रोध से उसने वो टुकड़े सब चार दिशा में फेंक दिए। तो कहते हैं कि पांच, एक मिनट ना, पंच शिव का क्षेत्र निर्माण हुआ उससे। धारेश्वर, गुणवंतेश्वर, मुरुडेश्वर और शेजेश्वर और एक गोकर्णेश्वर, इस प्रकार के पांच शिव जी के क्षेत्र निर्माण हुए। तो भगवान की कृपा से हम मुरुडेश्वर जाने का प्रयास करेंगे कल, और गोकर्णेश्वर को भी देखेंगे। तो ऐसा ये कथा है इसकी, और छोटी सी कथा है, बड़ी कथा नहीं है, लेकिन जगह बहुत सुंदर है। ऐसे कहा गया है कि ये नारियल से, केले केले के बागों से, नीले समुद्र से, और बहुत सुंदर समुद्र किनारे से सुसज्जित है। ये बहुत बहुत सुंदर जगह है, और विशेष रूप से वो तो प्रकृति का सौंदर्य है, लेकिन फिर भी इसको काशी के प्रति काशी माना गया है, दक्षिण काशी माना गया है। काशी विश्वनाथ जो है ना, वो शिवजी का राजधानी है, वहाँ पर शिवजी ने अपना राज्य बसाया था। वैसे उनको इंटरेस्ट नहीं था बसाने में, लेकिन क्या करें, दक्ष के कन्या के साथ विवाह किया ना उन्होंने, तो दक्ष का, दक्ष की ऐसे बहुत सारी कन्या थी, 27 कन्या तो चंद्रलोक ने ब्याह ली, और भी कन्याएं बहुत थी उनकी, क्योंकि अलग अलग युग में वो अलग अलग लीला करते हैं। तो 10 कन्याओं का विवाह अच्छे अच्छे लोगों से हुआ, लेकिन एक कन्या कहती है कि मैं आपके द्वारा नियोजित वर का शादी नहीं करूंगी, मेरे वर मैंने ऑलरेडी चुन लिए, लव मैरिज कहते हैं उसको। तो वो बहुत क्रोधित हो गए पिताजी उनके, और फिर भी विवाह हो गया उनका। तो वो बहुत हमेशा ताने मारते थे, उसने वैसे तो बरी कर दिया था अपने कि मैं तुम्हें अभी इसके आगे कन्या नहीं बोलूंगा, और तुम मुझे पिताजी मत बोलना। ऐसा होता है ना आमतौर पर, वो बड़े लोगों में भी ऐसा ही होता है। हाँ, समस्या सेम होती है, सिचुएशन बदल जाती है खाली। तो वो शिवजी, पार्वती कहती थी अभी इतने बड़े संत थे वो शिवजी महाराज, इतने बड़े विरक्त योगी थे कि वो पेड़ के पीछे बैठकर जप करते हैं, घर भी नहीं उनका। तो शिवजी ने, माता जी ने कहा कि कम से कम घर तो होना चाहिए ना, अभी गृहस्थी शादी की तो घर तो होना चाहिए। तो ये इतने विरक्त थे, ये मैंने स्टोरी बताने का प्लान नहीं किया था, मुझे अपने आप इससे प्रेरणा हो रही है इसलिए बता रहा हूँ। तो वो शिवजी महाराज कहते हैं कि क्या जरूरत है अपने को, भजन करना चाहिए भगवान का और आनंद रहना चाहिए। नहीं, वो पिताजी और बहुत ताने देते रहते हैं हमेशा। तो उन्होंने ना एक हवा महल बनाया। ये मत समझना कि शिवजी के पास कोई साधन नहीं है, वो तो परम साधन और शक्तिशाली ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति है, लेकिन वो इतने विरक्त है कि उनको रुचि ही नहीं इसके अंदर। फिर भी पत्नी के आनंद के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा हवा महल बनाया, मतलब आकाश में एक देश बनाया उन्होंने तैरता हुआ। इसके अंदर पर्वत है, नदियां हैं, झरने हैं, गुफाएं हैं, वन है, उपवन है, फल है, फूल है, रत्न माणिक जो चाहिए सब कुछ है, और महल बनाया उसके अंदर रहने के लिए, बहुत सुंदर जगह बनाई। तो भारद्वाज ने कहा अच्छी जगह है बहुत, हम लोग उसको भी गृह प्रवेश करेंगे, वास्तु पूजा करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, सब संतों को बुलाएंगे, देवताओं को बुलाएंगे, मैं भोजन कराऊंगी अन्नपूर्णा के रूप में। तो बहुत बड़ा ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक बहुत प्रसिद्ध उत्सव हुआ। आप सोच सकते हैं ना, पार्वती के घर में गृह प्रवेश हो रहा है, तो पार्वती कोई साधारण थोड़ी व्यक्ति है, कोई अन्न की कमी नहीं है पार्वती, तो नाम ही अन्नपूर्णा है। तो इतना बड़ा भोज वहाँ पर इंतजाम किया गया। तो कहते हैं ना, जैसे अभी हाल में ही बम्बई में बहुत बड़ी शादी हुई, सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ऐसी बड़ी शादी में सब बड़े से बड़े लोग जाते हैं, है ना, द बिगेस्ट पॉसिबल गेस्ट यू कैन एवर थिंक दे विल बी देयर इन द वेडिंग। वैसे अन्नपूर्णा जी के घर में गृह प्रवेश हो रहा है तो कितने बड़े लोग आ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, जितने सप्तऋषि हैं, जितने ऋषि हैं, जितने देवता हैं, सारे वहां पर पहुंच गए। पार्वती जी का निजी निमंत्रण था, बहुत बड़ा कई दिन तक चलने वाला उत्सव बना, बहुत सारी पूजाएं यज्ञ हुए उसके अंदर, बड़ी धूमधाम से गृह प्रवेश किया गया। अभी कौन सा भी उत्सव जो होता है ना तो उसकी परिणति किससे होती है बताइए आप, वो करने से बिना वो उत्सव पूर्ण नहीं होता है। हाँ यज्ञ तो हो गया ना प्रभु जी, यज्ञ अगर पूर्ण करना है तो क्या करना चाहिए उसके एंड में, दक्षिणा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, मैं पुरोहित हूं यज्ञ करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे यजमान भूल जाते हैं, हम लोग सोचते हैं अभी कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी। लेकिन ब्राह्मण को सोचना नहीं चाहिए ऐसे, कभी प्रेम से यज्ञ करना चाहिए। लेकिन जो यजमान है उसके लिए बहुत जरूरी है, जब तक दान धर्म न किया जाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाए, संतुष्ट न किया जाए, तब तक वो आपका यज्ञ संतुष्ट संपूर्ण नहीं होगा, वो परिपूर्ण नहीं हो सकता है। तो शिवजी महाराज बैठ गए पार्वती के साथ, और जो आ रहे हैं जिनको जो चाहिए वो दे रहे हैं, उनके पास कुछ कमी नहीं है, मतलब है तो वैसे विरक्त लेकिन कमी कुछ नहीं है उनके पास। तो सब जितना लुटाना था उतना लुटा दिया, मतलब ऐसा दान धर्म कभी हुआ नहीं। और आखिरी में एक साधु आया, वो बोला मुझे ये हवा महल चाहिए, उसको संकल्प करके तुरंत हवा महल दान दे दिया और जाके वापस पेड़ के नीचे बैठ गए। ऐसे है हमारे शिवजी महाराज। फिर वही बात कि भी घर नहीं है, तो फिर शिवजी ने काशी बसाया, काशी को नाम ऐसा बसाया कि इतना समृद्धि थी काशी में, जगह जगह स्वर्ण हीरे मोती ऐसे सब बनाए उन्होंने, और खुद भी वहां पर निवास करने लगे उनके भक्तों के साथ, जो उनके बहुत सारे भक्त हैं, वैसे बहुत सारे भक्त हैं, एक नहीं है, बहुत राक्षस भक्त हैं उनके। लेकिन क्या हुआ, भगवान वो एक बड़ा महाभागवत में कथा आती है उसमें, तो उसमें बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, उसका पूरा वर्णन भागवत में दिया है। तो उस भागवत के युद्ध में ना चक्र जाकर पूरी काशी को राख कर देते हैं, पूरा दहन कर देते हैं उसका। और उस कथा के बाद में जब काशी राज्य शिवजी का नष्ट होता है तो शिवजी जो है ना वो शरण में आते हैं कृष्ण के, और कहते हैं अभी तो काशी भी जला दिया आपने, अभी क्या मेरे पास बचा है। और कहते हैं शिवजी महाराज भगवान को कि मैंने तो राक्षस के पक्ष में आपके साथ में युद्ध करने का प्रयास किया, तो राक्षस को मैंने वादा किया था, और राक्षस ने कहा था कि मुझे भगवान कृष्ण को मारने का वर दीजिए मैं मार सकूंगा उनको। तो शिवजी उसको ऐसा वर देते हैं, डोंट वरी, आप चिंता मत करना, जब अब युद्ध होगा ना कृष्ण से तो मैं आपके पक्ष में युद्ध करूंगा। मतलब एक बार वर भी देते हैं और देते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि शिवजी राक्षस के पक्ष से कृष्ण से युद्ध करते हैं, और उधर चक्र जाकर पूरा काशी को जलाकर भस्म कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में राक्षस का भी वध होता है और शिवजी भगवान के चरणों में शरण आते हैं। और फिर शिवजी कहते हैं कि मैं देखो क्या करूं, आपकी सेवा में बहुत राक्षसों का संग प्राप्त होता है, मेरी मति भी भ्रष्ट हो जाती है, मुझे ना अभी आपका संग बहुत निकट से आवश्यकता है, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं, आपकी सेवा करूंगा लेकिन आपके साथ में रहूंगा। तो ना कोई बात नहीं, आप मेरा शंख क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, जो आज के नाम पे जगन्नाथपुरी है, वो शंख क्षेत्र के पास में एक सुंदर वन है, एक आम्र वन, उसका वर्णन करते हैं भगवान, इतना सुंदर वन है, वहां पर आप निवास करो। तो वो वन जो है उसको आज भुवनेश्वर नाम से जानते हैं, भुवनेश्वर के रूप में वहां पर वो स्थित हो गए। और वहां पर भी ऐसी स्थिति है शिव जी की कि नॉर्मल लिंग होते ना शिव जी के, वो ऐसे होते ना, वो जमीन के ऊपर उसका एक अंग होता है, लेकिन भुवनेश्वर है और त्र्यंबकेश्वर है, ये ना ऐसे क्या कहते हैं उसको, मराठी में कहते हैं खोलगट, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, ऐसे गहराई में होता है वो, उल्टी दिशा में। तो भुवनेश्वर वैसा शिवलिंग है, और उस गहराई में उतने ही साइज की शालिग्राम शिला, गोपाल शिला रखी गई है। ये रहस्य हमको 2015 की यात्रा में पता चला, रात के समय हम लोग गए थे वहां पर, मैंने कहा था ना कि हर यात्रा में कुछ ना कुछ चमत्कार होता है। तो पहले दिन गए थे सब यात्रियों के साथ, थक के गए थे बहुत, तो फटाफट दर्शन कर लिया और चले आए। लेकिन मैं एक दिन वहाँ पर एक्स्ट्रा था, तो वहाँ के पंडा मेरे मित्र हैं वो मुझे ले गए, चलो मैं आपको भुवनेश्वर का मंदिर दिखाता हूँ। और रात का 9 बजे गए तो वहां पर मंदिर में कोई नहीं था, पुजारी बहुत आराम से बैठे हुए थे। बहुत मुझे देखते ही पता नहीं पुजारी को क्या प्रेरणा हुई, बाहर आया, वो वहां से बाहर आ गया जहां पर वो भगवान की सेवा कर रहा था, जहां पर वो बड़ा शिवलिंग है उसके ऊपर बड़ी शालिग्राम शिला रखी है। बाहर आया और मुझे बताया, मैं आपको ना एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ, और पहले ही बोलने चालू कर दिया, देखो मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मैं दक्षिणा के लिए नहीं आया हूँ, मैं दिल से आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा प्रेरणा हो रही है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ये जो शिवलिंग है ना, इसमें सारे भोग के मंत्र जो हैं वो गोपाल मंत्र हैं, गोपाल मंत्र से ही यहाँ भोग लगता है। बोला ऐसे क्यों, तो शिव जी का लिंग है। उन्होंने कहा पहला भोग वो शालिग्राम शिला को लगता है, और शालिग्राम शिला कृष्ण है स्वयं, तो गोपाल मंत्र बोलकर उनको भोग लगाते हैं, फिर वही भोग भुवनेश्वर को लगाते हैं महाप्रसाद के रूप में। इसलिए शास्त्र में भी उसका प्रमाण दिया है, स्कंद पुराण में और कौन सा पुराण, पद्म पुराण में, कि भुवनेश्वर का प्रसाद जो है वो कृष्ण प्रसाद है, और कृष्ण प्रसाद नहीं, कृष्ण और शिव प्रसाद महाप्रसाद है वो, ऐसे मुझे उन्होंने बताया था। ये रहस्य मुझे पहले पता नहीं था, हमको लगा कि वो ऐसा दिख रहा है मतलब शिवलिंग ही है, लेकिन शिवलिंग ऐसा है और ऊपर ऐसे शालिग्राम शिला रखी गई है। दिस इज वेरी यूनिक थिंग। फिर मैं और एक बात बताता हूँ, मुझे क्या दिखाया, बाहर लिखाया, बोला आ जाओ बाहर आ जाओ, ये तो यहाँ पर 30 के ऊपर मंदिर हैं भुवनेश्वर के मंदिर के अंदर, सब देवियों का मंदिर है, सूर्य देव का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, सब मंदिर है उधर, वैसे जगन्नाथपुरी के अंदर भी 30 मंदिर हैं। तो बोले कि मैं आपको सूर्यदेव के मंदिर में लेके जाता हूँ, और सूर्यदेव के मंदिर में लेके आया तो ऐसे सुंदर विग्रह सूर्य के खड़े थे, सूर्य भगवान के। उन्होंने कहा अब मैं जब दीपक उनको दिखाऊंगा ना ऐसे आरती के रूप में, देखो सूर्य भगवान हंसना आरंभ करेंगे, ही विल गिव स्माइल टू यू। और वाकई में उन्होंने दीपक लिया अपने हाथ में और सूरज की आरती उतारी तो सन इज स्माइलिंग, सूर्यदेव पूरा मुस्कुरा रहे थे, जितनी बार आरती घुमाई उतनी बार वो मुस्कुराते नजर आए, और आरती रख दी तो ऐसे शांत खड़े, और आरती घुमाई तो ऐसे स्माइल दे रहे हैं। प्रयोग करके दिखाया उन्होंने, ऐसे नहीं कि खाली वो बता दिया वो शब्दों में, करके दिखाया। ऐसे काफ़ी चमत्कार उन्हें दिखाए, और कैसे अभी ऐसा मौका नहीं आया था भुवनेश्वर के दर्शन करने का। और उन्होंने अंदर का माला निकाल के मुझे पहनाया, अंदर का महाप्रसाद बक्सा भर के दिया, बोले प्रभु जी दोबारा आना। कैसे भगवान कृपा करते, अभी कोई कारण नहीं उसका, इट्स लाइक मर्सी, कॉजलेस मर्सी। तो ये बात सब कहाँ से निकली थी, हमारे शंकर जी महाराज से। तो शंकर जी महाराज फिर उनको वायुदेव ने सब कहानी बताई कि ऐसे ऐसे रावण को ट्रिक किया और सफल हो गए वो, और अभी आत्मलिंग रावण लंका में नहीं है, वो गोकर्ण में ही स्थिर हो गया है। तो शंकर जी पार्वती को लेकर आए हैं वहाँ पर, और उन्होंने ये पांचों जगह को भेंट दिया है, और उनके आने से ये पांचों जगह पर पूर्ण लिंग स्थापन हो गया, मतलब वो जो लिंग टुकड़े गिरे थे ना ऐसे ही सर, वो पूर्णाकृति के लिंग बन गए 5 अलग। और शिवजी ने प्रत्यक्ष जाकर हर एक लिंग को भेंट दिया, और ये स्थान फिर पंचशिव क्षेत्र से नाम से प्रसिद्ध हो गया। और आगे का इतिहास जो है वो इस तरह से है कि ये जो गोकर्ण क्षेत्र है ये संस्कृत विद्यालय के रूप में बहुत विश्वभर में मशहूर है, सारे पंडित लोग आज भी वहां पर संस्कृत की विद्या वेद पढ़ने के लिए वहां पर आते हैं, ये और एक धार्मिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमारे कास्ट के लोग आज कर्नाटक में क्यों हैं, इसका भी कारण वहाँ पर दिया गया है। पहले हमारे समाज के सब ब्राह्मण लोग उधर गोमन तक में रहते थे गोवा में, तो वहाँ पर पुर्तगाली लोग आए और ब्रिटिश लोग भी आए, और दोनों तरफ से उन्होंने हर प्रकार से लोगों को वो कन्वर्ट करना प्रयत्न किया। पुर्तगाली लोगों ने कुएं में पाँव डाले और वो जो पानी पिया उसको क्रिश्चियन बना दिया, और ब्रिटिश लोगों ने भी कन्वर्ट करना शुरू किया। तो फिर वो जो बहुत ही स्ट्रांग ब्राह्मण थे ना वो वहाँ से नीचे भाग के आए और गोमन तक में बसे, अपनी सॉरी गोमन तक से भागे और गोकर्ण में बसे, और फिर उसमें से फिर नीचे आते, फिर वो दक्षिण उत्तर कन्नड़ा दक्षिण कन्नड़ा करके कासारगोड मंजेश्वर कोचीन ऐसे केरला तक सब जगह फैल गए वो। तो ये इतिहास है। और कुछ लोग वहाँ से भाग के बंगाल भी चले गए, कुछ लोग और कई जगह पे गए, इसलिए हमारे कई पॉकेट्स हैं, हमारे ब्राह्मण लोग कई जगह पर कॉलोनी करके बसे हुए हैं, उसका इतिहास इसमें छुपा हुआ है। ये हो गई बात। ये सब कब हुआ पता है, बीच में ना विजयनगर का साम्राज्य, मैंने पहले भी बताया कथा में आपको, बहुत पावरफुल साम्राज्य था, लेकिन एक समय पर वो साम्राज्य जो है वो नष्ट हो गया, परास्त हो गए सब। और विजयनगर का साम्राज्य में ब्राह्मणों को बहुत आश्रय प्राप्त था। जब राजा ही स्वयं पराभूत हो गया तो सब भाग गए फिर उधर से, अलग अलग जगह पर चले गए। तो अभी गोकर्ण में आपको क्या क्या देखना है, गोकर्ण में मेन टेम्पल जो है बहुत भव्य और बहुत सुंदर मंदिर है। आज हम गए थे ना उधर उंडारू विष्णु में, तो कैसे, वो तो एक छोटी प्रतिकृति है, उसके अगर आप 10-20 गुना सोचेंगे ना तो वैसा वहाँ स्थिति है गोकर्ण में। बहुत सुंदर समुद्र किनारे महाबलेश्वर का मंदिर है, उसके बाद में गणपति का वहाँ मंदिर है, लेकिन वो गणपति दो भुजा वाले हैं, क्योंकि उस जगह पर गणपति दो भुजा में प्रकट हुए थे, इसलिए उनका मंदिर वहाँ पर माँ गणपति का दो भुजा वाला दर्शन वहाँ पर है। उमा महेश्वर का मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर है, ताम्र गौरी का मंदिर है, और एकमेव वेंकट रमणा का मंदिर भी वहाँ पर स्थित है, और एक कोटी तीर्थ नाम का बहुत बड़ा कुंड है, वो शिव जी की कृपा से वहाँ प्रकट हुआ। आज उसको कई कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन वो कोटी तीर्थ बहुत ही पवित्र तीर्थ है, हम उसका दर्शन भी करेंगे। और वहाँ पर गंगावली और पापनाशिनी नदी का संगम भी है, वो कहाँ पर है दिखना पड़ेगा। उधर मंदिर में ना बहुत उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, कार्तिक महोत्सव मनाते हैं, तो जितने छोटे उत्सव होते हैं उसमें सान्ना रथ यानी छोटा रथ चलता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन डोड्डा रथ यानी बड़ा रथ महारथ निकलता है, और बहुत बड़ा उत्सव 9 दिन तक चलता है, और बड़े सबसे प्रमुख रास्ते पर वहाँ पर रथ यात्रा होती है महाशिवरात्रि के दिन। इसका और भी एक महत्व है कि कर्नाटक में 5 मुक्ति क्षेत्र माने गए हैं, मुक्ति स्थल, उसमें से एक गोकर्ण है, नहीं कितने हैं, 7 मुक्ति स्थल माने गए हैं, उसमें से एक है उडुपी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, दूसरा है कोल्लूर जहाँ पर मूकाम्बिका देवी निवास करती है, तीसरा है सुब्रमण्य थोड़ा नीचे है वो, चौथा है कुंबसी, चौथा है कोटेश्वर, पांचवा कोटेश्वर, छठवा शंकर नारायण, और 7वां गोकर्ण। ठीक है, अभी हमने, हाँ वो गोकर्ण का नाम, ओके, वो जो कथा है ना उसको मुझे पूरी नॉलेज नहीं थी, मैंने बताया ना आपको, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो बता देता हूँ। वो एक समय पर ब्रह्मा जी के हाथ से अपराध हुआ, कई अपराध हुए वैसे, और कभी कभी शिव जी ने, एक बार ब्रह्मा जी ने, कहते ब्रह्मा जी को 5 मुख थे और 4 मुख वेदों को गा रहे थे, और एक मुख ना वो क्या कहते हैं प्रजल्प, यानी कि आम बातें, अपराध की बातें, गॉसिप की बातें, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, तो शिव जी को अच्छा नहीं लगा कि 4 मुख तो वेद बोल रहे हैं, 5वां मुख ऐसे बेफजूल की बातें क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने वो त्रिशूल से वो सर काट दिया था उनका। फिर शिव जी को ब्रह्महत्या का पाप लग गया था, तो शिव जी ने विश्व भर भ्रमण किया, सब जगह तीर्थों में स्नान किया, वो सर जो है ब्रह्मा का निकला ही नहीं। फिर उन्होंने राम कुंड में नासिक में स्नान किया, और वहाँ स्नान करते ही वो सर जो है गायब हो गया, तो इसलिए राम कुंड को ब्रह्महत्या का पाप नाश करने वाला कुंड माना गया है। ऐसे ब्रह्मा जी के हाथ से कई बार छोटे मोटे अपराध हो गए, तो एक अपराध के लिए शिव जी, ब्रह्मा जी ने अपराध किया, ब्रह्मा जी फिर समझ गए कि हमने अपराध किया, और ब्रह्मा जी तपस्या के लिए बैठ गए। तो वहाँ पर कहते हैं कि गंगावली और पापनाशिनी अगनाशिनी नदी है ना, वो जहाँ पर एकत्र होती है ना, वहाँ पर एक ऐसे कान के आकार का ऐसा एक स्थिति है वहाँ पर, कैसे बना है नोबडी नोज, अपना कान है ना, ऐसा आकार का वहाँ पर संगम है, और कहते हैं शिवजी उस कान के जैसे आकार के जगह से प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा है। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो जो गणेश जी दो भुजा वाले बालक बन कर आए थे ना, उनके भी कान ऐसे गाय के जैसे बड़े थे। अब ये वदंती है सब, उसमें कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं पहले। तो गोकर्ण नाम उसके लिए पड़ा उसका। और भी एक उसमें वर्णन आता है कि आप भागवत महात्म्य पढ़ेंगे ना, स्कंद पुराण में आता है भागवत महात्म्य, शिव जी भी पार्वती को बता रहे हैं भागवत महात्म्य, उसमें वो धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आती है। तो यहाँ पर रेफरेंस ऐसा आया है कि धुंधुकारी गोकर्ण का घर वहाँ पर था, गोकर्ण का जन्म भी वहाँ पर हुआ था, इसलिए उस जगह का नाम गोकर्ण पड़ा। अब ये सब उसको कहते हैं लोक वदंती, मतलब कुछ चीज़ें शास्त्रों के द्वारा हम तक पहुँचती हैं और कुछ चीज़ शास्त्र में नहीं होती है, वो लोक वदंती यानी फोकलोर, यानी लोगों के लोकल लोग उसको बताते हैं, फिर उनके बच्चे बताते हैं, फिर उनके बच्चों के बच्चे बताते हैं, फिर हम तक पहुंचती है वो कहानी। ऐसे ब्रज में भी बहुत सारी कहानियां हैं जो शास्त्र में कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ब्रजवासी बचपन से सुनते आ रहे हैं उसको, तो फोक लोर यानी लोक वदंती कहते हैं उसको। और वैसे हमारे जो इतने आचार्य हैं, जैसे इस्कॉन के कई आचार्य हैं फिलहाल, उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये लोक वदंती कथा है, ये इस पुराण की कथा है, ऐसे उन्होंने दिखाया है, वैसे ये लोक वदंती कथा है। हरे कृष्णा। हमने मुल्की की कथा में वो कुछ वंश बताया था ना आपको मैंने, इसका पुत्र वो, उसका पुत्र हेमांगद, उसका पुत्र ये, उसमें मयूर शर्मा का नाम आया था ना, याद है ना। तो मयूर शर्मा ये राजा मुल्की के राजा थे यहाँ के क्षेत्र के, लेकिन उन्होंने ये मंदिर का बहुत सुंदर तरीके से क्या कहते हैं जीर्णोद्धार किया है, ऐसा वर्णन आया है, और उनका इसमें संबंध है। उन्होंने अपने पुत्र के साथ में पल्लव वंश को परास्त किया साउथ इंडिया में जाकर, और उस धन से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ऐसा भी वर्णन आया है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कथा का विश्राम दें क्या, और कथा बताएं? अभी सुबह हम आपको एक जगह पर ले जा नहीं पाए क्योंकि वो जगह बेचारी 12 बजे बंद हो गई। हमारा विचार था कि आपको अनंत पद्मनाभ जी का दर्शन कराएं, लेकिन मंदिर 12 बजे बंद हो गया। इतना बंद हो गया कि लॉक वॉक लगा के सब लोग वहां पर कोई था ही नहीं। मैं गया था वो मंदिर अगर खुला रहेगा तो और थोड़ा खुला रखो ये विनती करने के लिए, पहले आगे गया था मैं, लेकिन बड़े बड़े ताले लगाए गए थे, उसमें अंदर प्रवेश करने की कोई चांस नहीं था। दो बुढ़ी औरतें बैठी थी, उन्होंने कहा कि मंदिर बंद हो गया। वो कौन सी भाषा में बोल रहे मैं समझ में नहीं आया, लेकिन समझ गया कि उनको क्या कहना है। उन्होंने कहा आई दो बार मतलब 5 बजे खुलेगा अभी। तो मैंने ठीक है अभी मैं जाता हूँ, क्योंकि 5 बजे तक तो यहाँ पर हमारी कथा और रथ यात्रा होने वाली है, कैसे कर सकते हैं, और बीच में मम कैसे करेंगे फिर। इसलिए हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। तो वो जो मंदिर है उसका नाम है अनंत शयन। कभी भगवान की इच्छा रही तो आपको दोबारा लेके जाएंगे, हाँ सवेरे के समय लेके जाएंगे। लास्ट टाइम जब यात्रा की थी ना तो सवेरे गए थे, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा दर्शन हुआ था। बहुत अच्छी जगह है कथा करने के लिए, बहुत शांत, और कारकाल जो जगह है ना आप देखा ना आते वक्त, पूरा जंगल ही जंगल है, पहाड़ी पहाड़ और जंगली जंगल दोनों तरफ, गर्द जंगल झाड़ी थी पूरी, इतना मधुर और इतना सुंदर प्राकृतिक स्थान था वो। तो ये मंदिर भी ऐसे बहुत ही विशाल प्राकृतिक जगह पर है, आपको ऐसा जाने से ही इतना आनंद आएगा ना कि आगे कथा सुने या ना सुने लेकिन भगवान का सानिध्य मिलेगा आपको। तो वहाँ की जो मूर्ति है ना, मैं इन लोगों को बता रहा था आते वक्त, जैसे मेरे पीछे दीवार है ना, ये देखो ये कितनी बड़ी दीवार है, देख रहे हैं ना आप, वहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक है ना, वो इतनी ऊंची दीवार है, इतनी चौड़ी है, इतनी पूरी एक शिला है उधर, बिग वन, मे बी इससे भी बड़ी होगी, शायद इससे भी बड़ी होगी। और वो शिला के अंदर ना सोए हुए भगवान है अनंत पद्मनाभ जी, उतने बड़े नहीं जितने वो अनंत पद्मनाभ जी जहाँ त्रिवेंद्रम में हैं, लेकिन काफी बड़े हैं। और उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर सोए हुए भगवान तो है ही, उनके चरणों में दो देवियां हैं, भूदेवी श्रीदेवी उनके चरणों में विराजमान है, और उनके नाभि से वैसे शिला से कमल निकला है, ऐसे जो शिला में नहीं है, शिला के बाहर है ऐसे, वैसे आगे जाकर कमल खिलता है, और उस कमल में ब्रह्मा जी की मूर्ति है, पता नहीं कैसे वो बैलेंस करके रखा है उसको, आई डोंट नो, वो उसी मूर्ति के अंदर ही वो भाग है उसका। फिर नीचे कुछ ऐसे देवताएं भी खड़े हैं उनकी सेवा में, ऐसे खड़े हैं वो भी उस पत्थरी शिला में, उसी शिला में है, ऐसा भव्य दर्शन है उनका, बहुत सुंदर दर्शन है। और एक वो होता है ना शालिग्राम शिला कैसी होती है, एकदम शाइनिंग, हाँ चमकदार काले रंग की होती है ना, काले रंग के अंदर भी एक रौनक होती है, वो शालिग्राम के अंदर होती है, उस शिला से बना हुआ है पूरी मूर्ति, वो पूरे जितने भी अंग है भगवान के पूरी तरह से बने हुए, सुंदर रूप से बने हुए हर एक अंग, उनके चारों हाथ, उनके पैर, चरण कमल दो देवियां, बाकी सेवक खड़े हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं कमल के ऊपर, ऐसा पूरा दर्शन, इतना विशाल दर्शन उस मंदिर में है आप, बहुत सुंदर। और वो ऐसे अभी वो मूल तो उनके भगवान की मूर्ति तो अनंत पद्मनाभ है, वो तो इतने बड़े हैं कि आप वहाँ जाएंगे ना तो वो बिल्डिंग से लेकर यही बिल्डिंग तक है, उस बीच में 3 दरवाजे हैं, अगर सर का दर्शन करना है तो आपको एक दरवाजे देखना पड़ेगा, वहाँ एक अलग लाइन लगी रहती, वो हो गया फिर आगे जाना है, फिर वक्षस्थल का दर्शन मिलेगा। वो बड़ा दरवाजा है, उसके अंदर केवल उनका आपको पेट दिखेगा, बड़ी नाभि दिखेगी। और सर वाले दर्शन में जाएंगे ना तो ऐसा हाथ ऐसा उन्हें छोड़ दिया नीचे, ऐसा सो रहे ना वो ऐसे हाथ छोड़ दिया ऐसे, तो ऐसा बड़ा हाथ है उनका, वो उसके हाथ के ऐसे बड़ी बड़ी उंगलियां हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी अंगूठी हैं, वो हाथ ही दिखते रहेंगे तो आपको धन्य हो जाएंगे आप, इतना बड़ा हाथ है ऐसा। वो हाथ और सर पहले दरवाजे में, दूसरे में वक्षस्थल, और तीसरे में ऐसे रखे हुए दो चरण कमल हैं, ऐसे बड़े विशाल, उसमें भी अलंकार लगे हुए। वो कहते हैं कि वो जब पहले बने थे ना, जब पहले निर्माण हुए ना, तो वो कथा मैं आपको बताने वाला हूँ। जब पहले बने थे तो वो 18 किलोमीटर लंबे थे, 3 गांव में थे वो पूरे मिलके। भगवान क्या नहीं कर सकते। तो वो जो मूर्ति थे मैं बता रहा हूँ, वो शिला जो है ना, वो वहां कैसे आई कारकाड़ा में, वो कारकाड़ के आगे जो समुद्र है ना, कारकाड़ तो पूर्व दिशा में, वह पार करके पश्चिम में आएंगे, पश्चिम में समुद्र है, तो वो समुद्र में किसी भक्त को प्रेरणा दी भगवान ने कि मैं उधर हूँ, मुझे निकालो वहां से। तो भक्त लेके गए बहुत लोगों को, और उनको समुद्र में वो शिला मिली, और उन्हें कहा कि कारकाड़ में स्थापन करो उसको, भगवान ने स्वयं प्रेरणा दी उसको। अभी कहाँ से आए कैसे आए वो केवल भगवान ही जानते हैं। भगवान अपने आप को लुप्त भी अपनी इच्छा से करते हैं और प्रकट भी अपनी इच्छा से करते हैं। जब चाहे भक्तों को सेवा देने का भाव हो गया तो वो प्रकट करने का स्वप्न देते हैं या किसी को इशारा करते हैं, जैसे वो नाग से इशारा किया मैं इधर हूँ, है ना, फिर उन्होंने ढूंढ के निकाला उनको, फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहना चाहता, मुझे मूलिका क्षेत्र में जाना है। ऐसे भगवान अपनी इच्छा से सेवा का आयोजन कर लेते हैं। तो वो भक्त ने उसको लोगों की सहायता से वहाँ से समुद्र से उठाया और वहाँ कारकाड़ा में स्थापन कर दिया। तभी मैं आपको वो कहानी बताऊंगा कैसे ये अनंत पद्मा भगवान प्रकट हुए त्रिवेंद्रम में। हाँ, छोटी सी कहानी, ज़्यादा लंबी नहीं है। अनंत पद्मनाभ त्रिवेंद्रम, वो अलग यात्रा होगी हमारी। अनंत पद्मनाभ, जनार्दन स्वामी, आदिकेशव और गुरुवायूर, ऐसा एक कॉम्बिनेशन है हमारा, वो प्लान है हमारा। आपको कभी भगवान की इच्छा हुई तो ले जाएंगे उधर, जय हो, है निश्चित होना, होने वाला है वो, लेकिन कब ये भगवान जानते हैं। हमारे लिस्ट में है, एप्लीकेशन में लिखा है हमने, जब मंजूरी होगी तो जाएंगे। कैसा है ना, हम लोग ऐसा बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, कब बोलते हैं चित्रकूट, कब बोलते हैं अयोध्या, कब बोलते हैं अहोबिलम, कब बोलते हैं सिंगाचलम, क्या क्या बोला था प्रभु जी, सिंगाचलम, अयोध्या, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, फिर उडुपी, फिर ये हमारा 4 वाला कॉम्बिनेशन, वो सब हुआ, लेकिन आखिर नंबर लगा उडुपी का, तो उडुपी आ गए। अब अगली बार देखेंगे क्या होता है पैदा, बताएंगे आपको। तो दिवाकर नाम के भक्त थे भगवान के, और दिवाकर नाम के भगवान बहुत सुंदर भक्त थे भगवान के। तो उसको कृपा करने के लिए भगवान एक बालक बनकर उनके पास आए, तो बालक ने अपने सौंदर्य से दिवाकर को मोह लिया। जैसे दिवाकर को भगवान के प्रति आकर्षण था, वैसे ही आकर्षण इस बालक के प्रति उनको अनुभव हुआ कि ये वैसे ही सुंदर है, लेकिन पता नहीं ये भगवान है, अद्भुत आकर्षण हुआ। तो बालक को उन्होंने कहा कि मेरे साथ रहो आप, बालक को कहा उन्होंने, बालक ने कहा कि मैं रहूँगा लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मुझे आप गुस्सा नहीं करोगे, कभी डांटना नहीं मुझे आप, मैं कुछ भी करूँगा आप कुछ नहीं बोलेंगे, जिस दिन डांटेंगे उस दिन मैं चला जाऊँगा। तो वो इतना मोहित हो गए थे, कुछ भी राजी हूँ मैं, वो आगे शरारत करेगा उसका सोचा भी नहीं उन्होंने, कि यस बोल दिया, आप आओ और मेरे साथ रहो और कभी भी आप, मैं आपको डांटूंगा नहीं। बस बालक ने रहते ही चालू किया अपना शरारत, इतना मस्ती करना शुरू किया, तो रोज ऐसा लगता है कि डांटू लेकिन बंद, कुछ नहीं करना है। अभी शरारते अभी आज किया शरारत तो माफी हो गई, कल किया बड़ी उससे शरारत, आज की माफी हो गई ना, तो कल बड़ी शरारत किया, फिर माफी हो गई, तो हर दिन बड़ी से बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी शरारत। लेकिन उन्होंने बहुत सह लिया, एक दिन था ना उनकी पूजा में से शालिग्राम शिला ही मुंह में डाल दिया उसने, तो उस दिन ये इतना भड़क गए कि वो इतना गुस्सा आ गया कि वो गुस्से में उनको याद ही नहीं रहा कि मुझे उनको डांटना नहीं। तो उन्होंने डांटा उसको, क्योंकि शालिग्राम शिला पूजा वाली मुंह में डाल दिया उसने, तो बहुत क्रोध किया उसके ऊपर। तुरंत बालक जाने लगा, आपने मुझे डांटा ना मैं जा रहा हूँ, तो ये पीछे पीछे भागने लगे उसके, बालक आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। बालक जंगल में चला गया, जंगल में गर्द झाड़ी में चला गया, तो बाद में केवल उसकी घुंघरू की आवाज ही आ रही थी कि बालक जा रहा है, मतलब आगे जा रहा है बालक, उसके घुंघरू की आवाज ही आने लगी, बालक तो अदृश्य हो गए, तो घुंघरू की आवाज के पीछे पीछे भागे, लेकिन फिर घुंघरू की आवाज भी बंद हो गई। बहुत परेशान हुए, बहुत रोए, बहुत रोए, बोले कहाँ हो, दर्शन दो, माफ करो, दर्शन दो। बालक ने कहा अब मैं आपको अनंत नाम के जंगल में मिलूंगा। अभी अनंत नाम के जंगल मिलेगा, जीपीएस मैप नहीं भेजा, ये वो कहाँ जंगल किधर है, वो इधर है कि स्वर्गलोक में है कि कौन से लोक में है, उसका वर्णन एड्रेस नहीं भेजा, इतना ही बोला अभी आपकी मुलाकात मुझे मेरी अनंत जंगल में होगी, मतलब अनंत नाम के जंगल में होगी, अनंत वन में होगी। तो इसने ना बहुत जगह ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा, सबको पूछते गए अनंत वन कहाँ है, अनंत वन कहाँ है, अनंत जंगल कहाँ है, कोई किसी को पता ही नहीं, कभी ऐसे ही बोलते अनंत वन कौन सा मंगा, ये हमने सुना नहीं कभी, मतलब ऐसा सोचा कि क्या चीटिंग किया बालक ने मुझे कि क्या किया, लेकिन इतना प्रेम था बालक के ऊपर, इतना प्रेम था कि वो बालक के शब्द पर विश्वास रखे ढूंढ रहे उसको। तो कहते त्रिवेंद्रम तक पहुँच गए दिवाकर, त्रिवेंद्रम तक पहुँच गए, वैसे उदास बैठे थे एक दिन, अभी क्या करेंगे, सब कुछ तो भी ऐसा लगता है कि निराश हो गए पूरे। तो देख रहे हैं कि एक दादी जो है ना, एक अपने पोते को डांट रही है, कोई शरारत की होगी, तो वो डांट कर क्या बोलते हैं, आगे डांट शरारत करोगे ना तुमको अनंत वन में फेंक दूंगी मैं, अनंत जंगल में जाके छोड़ के आऊंगी। तो इसके कान खड़े हो गए, अरे जाओ मैया बोलो वो जंगल किधर है। तो मैया ने उनको बताया कि इस तरफ है, उसके घर के पास ही था वो, उसको ना एक वाती दिया, वाती उसको दीपक बना के दिया, एक वात हाथ में दिया, अभी वाती कितने देर तक रहेगी आप सोचो ना, अभी एक अगर पंती वंती दी हो गई घी डाल के एक लीटर का, तो कम से कम दिन भर तो घूमता था वो, रात भर कम से कम, एक वाती हाथ में दिया, और फिर वो वाती को लेकर ना ढूंढने के लिए भगवान को अंदर चला गया। वो जब जंगल में गए ना, तो उसको वापस वही घुंघरुओं की आवाज़ आई जो बंद हो गई थी एक दिन ढूंढते ढूंढते, तो उसका उत्साह बढ़ा, वो आगे गया और आगे गया, आनंद का अनुभव हुआ, शरीर में रोमांच खड़े हो गए, हाँ तम गदगद हो गया शरीर उसका कि मिल गए, इतने दिन के बाद में मिल गए। तो उसमें एक बड़ा एक पेड़ था, इलुप नाम का पेड़ था, इलुप वृक्ष, वो ऐसा ना उसके सामने धाड़ करके गिर गया, तो डर गया वो आवाज सुन के, लेकिन उसमें से ना एक बहुत बड़ा तेज निकला उस पेड़ से आंखों के सामने, और वो तेज है ना उसके आंखों को ऐसा एकदम पूरा अंधा जैसा हो गया ना वो, इतना तेज देखकर। तो फिर उसके सामने वो पेड़ के गिरने के बाद जो तेज निर्माण हुआ पेड़ से, वो तेज जो है ना वो सोए हुए अनंत पद्मनाभ के रूप में प्रकट हो गया जंगल के अंदर, और वो 18 किलोमीटर लंबे थे, और उन्होंने अपने इस अनंत पद्मनाभ के मूर्ति के रूप में प्रकट होने के बाद में दिवाकर को आदेश दिया, सेवा करो मेरी, फल फूलों से सेवा करो। तो बेचारे ने तुरंत वन में जाकर फल फूल इकट्ठा किया और सेवा करना आरंभ किया, और बहुत दिन तक जंगल में अकेला दिवाकर, कोई नहीं जंगल में, केवल भगवान, 18 किलोमीटर लंबे और दिवाकर, और सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे ना, समझो अभी पैरों में घुंघरू पहनाना है और बाद में सर पे मुकुट लगाना है, सोच सकते हैं ना आप, अभी आप माता जी लोग डीटी वर्शिप करते ना, इधर ही खड़े रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा हाथ किया तो सर, ऐसा हाथ किया तो पैर, ऐसा हाथ किया तो कमर, क्या चाहिए आपको। ये बेचारा पैरों में अगर माला पहनानी है तो फूल चढ़ाना है तो 18 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, बाद में सर पे मुकुट पहनाना है तो 18 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, कई किलोमीटर के बाद में पेट में और इसमें धोती पहनाना है, बाप रे। तो बाद में उसने भगवान से विनती किया, भगवान लड़ा थोड़े छोटे हो जाओ तो अच्छा रहेगा। तो भगवान वो कह रहे कि इधर लिखा है नोट्स में कि उनके पैर एक गांव में थे, उनका पेट दूसरे गांव में था, सर तीसरे गांव में था। तो वो कच्चे आम और नारियल ये सब लेकर भगवान की सेवा करते थे, फिर उनकी प्रेम से भगवान फिर वो दिवाकर के हाथ में, जो दिवाकर की जो हाइट थी ना, हाइट हो सकता है दिवाकर हमसे लंबे होंगे क्योंकि वो थोड़े पुराने ज़माने के कलयुग के जीव थे ना, हो सकता है 6 से 8 फुट होंगे शायद, समझो। तो भगवान दिवाकर के ऊंचाई के 3 गुना लंबे हो गए, मतलब इतने छोटे हो गए कि दिवाकर की ऊंची के 3 गुना हो गए, और आज की स्थिति में जहाँ बैठे हुए हैं वो उसी आकार में आज भी हैं। तो इस तरह से हमारे अनंत पद्मनाभ जी वहाँ प्रकट हो गए और उसी का प्रतिकृति विग्रह जो है ये अनंत शयन, अनंत आसन, अनंत पद्मनाभ के मंदिर में विराजमान है। श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान के अनंत लीलाओं की, आज के आनंद की जय हो। धन्यवाद सबका।